आदरणीय महाजन जी, साथी महानुभाव, माताओं बहनों, बंधुओं, आज का हमारा विषय है आज के समय में उपासना की प्रासंगिकता या महत्व। हम यही मान लें कि कोई महत्व नहीं है तो क्या बुरा है, उपासना की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है तो अपने को क्या आपत्ति है, मान लेते हैं एक बार नहीं है तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। मैं तो समझता हूं कुछ भी नहीं होगा, बड़ा आराम होगा, एक झंझट और मिटेगा कि ये करो वो करो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, इस समय बैठो उस समय बैठो। यदि ऐसा हो जाए तो कोई आपत्ति तो है नहीं, लेकिन कठिनाई क्या है, ऐसा नहीं करने वाले क्यों दौड़ते हैं उपासना के लिए। भाई आपके यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, बहुत संपन्न लोग हैं, कोई साधनों की कमी नहीं है, फिर ये इधर उधर क्यों भागते हैं। या हमारे में ही क्यों ऐसा लगता है कि कहीं जाओ, तो पता क्या लगता है, ये हमारी कुछ मजबूरी है, ये इच्छा नहीं है, ये विकल्प नहीं है कि हम चाहें तो उपासना करें और चाहे ना करें। यदि आप ऐसा समझते हैं तो फिर आपको कभी भी उसको याद नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता कि छोटी से छोटी बात के लिए हम उसे याद करते हैं। चलो आपके यहां तो हो सकता है सब सुविधा है, आपको निश्चित परिणाम मिल जाए तो आप शायद याद ना करें, लेकिन मैं अपने परिवेश में तो देखता हूं कि बच्चा गलती करता है तो यूं सोचता है भगवान आज मां नहीं मारे तो अच्छा है, अब भगवान का मां से क्या लेना देना है, भगवान मां को कहेगा कि मत मार, लेकिन मांगता तो भगवान से है। एक वकील सवेरे जाता है तो यूं सोचता है भगवान आज मुकदमे ठीक ठाक हो जाए, क्यों भगवान का जज से क्या लेना देना है, लेकिन जज को तो कहता नहीं है और भगवान को कह रहा है। एक बच्चे का परीक्षा है, परीक्षा देने जा रहा है, कहता भगवान आज पेपर बहुत ठीक आ जाए, क्यों भगवान पेपर बनाता है, प्रश्न पत्र भगवान ने बनाया है, लेकिन जाता तो भगवान के पास ही है। परिणाम घोषित होने वाला है, सोचता है भगवान आज पास हो जाऊं, अच्छे नंबर से हो जाऊं, अच्छी पोजीशन से हो जाऊं, तो भगवान देता है। लेकिन एक बात बताओ, नहीं देता तो फिर आप याद क्यों करते हो, उसके बिना भी कह दो जज साहब आज मुझे निर्णय ठीक देना, हो सकता है सुन ले, हो सकता है टेलीफोन करवा लो, सिफारिश हो जाए तो बात बन जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। होता ऐसा है, मन में सोचता रहता है भगवान आज ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए, बच्चा बीमार है, मां सोचती है भगवान आज बुखार उतर जाए तो कितना अच्छा हो, भगवान बच्चा ठीक हो जाए, ये करूं वो करूं, तो पता नहीं क्यों मजबूर है आदमी। मजबूर नहीं है तो करेगा नहीं, और मजबूर है तो करे बिना रहेगा नहीं। तो आप समझते हैं कि उपासना करे ना करे, मैं समझता हूं कि आप की मजबूरी है, आप कर क्या सकते हो, बिना किए तो रह नहीं सकते। अब उपासना करने की मजबूरी क्यों है, ऐसा है कि आप भोजन क्यों करते हो, भूख लगती है, पानी क्यों पीते हो, प्यास लगती है, फिर उपासना क्यों करते हो, कुछ लगता होगा तभी तो करते हो, वो क्या है जो लगता है। बड़ा सीधा सा गणित है, गणित ये है, कोई यूं सोचे ना कि दुनिया में तो बेकार है, मिथ्या है, झूठा है, जैसे हमारे अद्वैतवादी सोचते हैं, वो गलत है, और उतना ही गलत ये भी है जो सोचते हों कि अंदर क्या रखा है, उपासना में क्या रखा है, भगवान क्या होता है, क्या व्यर्थ की बातों में समय खोने से क्या फायदा है, ये भी गलत है। दोनों ही गलत हैं। क्यों गलत हैं? आपके घर में बच्चा भी है, आपके घर में बूढ़ा भी है, आपके घर में बड़ा भी है, आपके घर में छोटा भी है, आपका घर में आपका घर का सदस्य है, आपके घर में अतिथि भी है। तो आप ये बताओ, छोड़ोगे किसे? इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको आप कह दोगे इसकी तो चिंता करने की जरूरत है नहीं, और इसकी कर लेंगे, ऐसा कर सकते हो? तो इतनी सी सीधी सी बात है, आप एक नहीं हैं, आप दो हैं। आप यदि एक की चिंता करके दूसरे की छोड़ देंगे तो वैसा ही होगा कि घर में आप एक बच्चे को तो कहेंगे कि तू तेरा तो मैं ख्याल रखूंगी, और दूसरे को कहेंगे तू जा कहीं, ऐसा कैसे होगा? तो प्रश्न यह है कि कौन है दो, वो दो हैं कौन? कोई खास बात, दो हैं, एक शरीर है एक आत्मा है, दोनों में से क्या नहीं है? आत्मा नहीं है या शरीर नहीं है? यदि एक है तो एक के लिए काम करो, कौन मना करता है? लेकिन हैं ही दो तो काम एक के लिए कैसे करोगे, और एक के लिए काम करने से दूसरे का काम कैसे बनेगा? खाना दो हैं तो दो का खाना बनेगा, दो हैं तो दो के कपड़े आएंगे, है ना, दो हैं तो दो के साधन बनेंगे। इतनी सहज बात है, इस शरीर में दो हैं, एक शरीर है और एक जीवात्मा है। इस शरीर की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी गाड़ी की उपेक्षा कर सकते हैं, कहीं भी पटक दें, कहते हैं बड़ा पागल आदमी है, नई गाड़ी लाया है, इधर उधर कैसे डाल देगा। आप एक कल्पना करके देखो कि एक यहां तो ज्यादा झगड़ा होता नहीं, हमारे यहां तो बहुत हो जाता है, कोई नई मोटरसाइकिल, कोई नई कार, कोई नया कपड़ा आदमी लेकर निकलता है और कहीं थोड़ी सी खरोंच लग जाए, कार में कोई बच्चा एक कील लेकर के दो लकीर खींच जाए, तो आदमी को ऐसा लगता है जैसे उसके दिल पर खींच दी हूं, बहुत अखरता है, बहुत बुरा लगता है, बड़ा दर्द होता है। नया कुर्ता नया सूट पहन के निकले हो, कोई गंदगी लग जाए या कहीं कील में उलझ जाए, वो कील तो लगी है कपड़े में पर दर्द होता है दिल में। क्यों? उसकी क्या परवाह है, क्यों करता है? उसका मेरे से संबंध है, वो मायने शामिल है, इसलिए मुझे उसकी चिंता होती है। तो मैं इस शरीर में हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर के बिना रह सकता हूं क्या? शरीर के बिना मैं नहीं रह सकता, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है शरीर के बिना, शरीर के बिना मैं ही नहीं होता। कई बार कई बच्चे जो हैं अपने देश में बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न करते हैं। एक ने एक दिन कहा, मामा आपने हमारे लिए किया ही किया है जी। मैंने कहा क्या चाहता है? बोले हमारे मकान नहीं बना के दिया, हमको पढ़ाया नहीं, हमको कोई पैसा नहीं रखा, हमारे लिए क्या किया उन्होंने? मैंने कहा जो तू है ना, है सत्ता अस्तित्व, ये किससे है? ये हमारी सत्ता किससे है? बोले तुझे इस धरती पर कौन लाया भाई? बोले जी वो तो मां बाप लाए। मैंने कहा और क्या चाहता है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? जिसकी सत्ता ही जिसके कारण से टिकी हो, यदि वो ये कहे कि हमको क्या दिया, तो उसका क्या कर सकते हो आप? मैंने एक ऋग्वेद का मंत्र सुनाया, ऋग्वेद के पहले मंडल का एक मंत्र है, कस्य नूनम कतमस्य अमृतानाम मनामहे चारु देवस्य नाम कोनो मैया आदितये पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरम च। वो कौन देव है जिसने मुझे माता पिता की शक्ल दिखाई है? इसका उत्तर है अग्ने वयम प्रथमस्य अमृतानाम मनामहे चारु देवस्य नामा स नो मैया आदितये पितर पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरम। तो ये शरीर मेरी सत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये दुनिया में यदि मेरा शरीर ना हो तो मेरी गिनती नहीं होती। ये मुकदमे चलते हैं ना न्यायालयों में, एक दिन तारीख पर जाते हैं, क्या हुआ, फला साहब आए, साहब हो साहब तुम मार गए, फिर मुकदमा चलेगा
खत्म।
ओ एक पंक्ति कर एक रेखा खींच देता है, एक लाइन लगा देता है, ये आदमी गया, अब इसका दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, दुनिया उसके लिए आई ही नहीं। तो शरीर जो है वो इस संसार में मेरी सत्ता का सबसे बड़ा आधार है। चलो इस शरीर के मैं कुछ करूं तो बहुत अच्छी बात है, पर इस शरीर में शरीर ही तो नहीं है केवल, यदि केवल शरीर होता तो आदमी मुर्दे से भी काम चला लेता। शरीर से काम चलना है तो मुर्दे से भी चला लेता, लेकिन मुर्दे को तो फेंकाता है जाकर के, बाप हो या मां हो, उस समय उनकी कोई वो थोड़ी करता है कि ये बाप है इसलिए इसको रखूंगा, ये बेटा है इसलिए रखूंगा। उस समय तो आप कोई रख भी ले तो लोग छीन कर जला देते हैं। तो शरीर भी नहीं है अकेला, तो दूसरा है कोई जिसके लिए ये शरीर है। तो अब आत्मा भी है और शरीर भी है, तो आप उपासना मत करो, कोई बात नहीं है। बाकी क्या करोगे, खाना नहीं खाओगे, खाओगे, सोओगे नहीं, सोओगे, शरीर के दुख है मिटाओगे, मिटाओगे, फिर इस शरीर का करते रहोगे, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे का नहीं करोगे उसका कोई नुकसान तो होगा कि नहीं होगा, वो कैसे होगा फिर? तो यदि केवल शरीर के लिए करोगे तो फिर हमारा वाम मार्ग या चार्वाक सबसे अच्छा है। वो कहता है शरीर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। जब तक जियो ठाट से जियो, कर्जा लेकर भी आराम करना पड़े, रहना पड़े तो रहो, क्योंकि जलने के बाद कौन लेने आने वाला है, कौन वसूल करेगा। तो हम ऐसे जी सकते हैं, लेकिन ऐसे जीने को आप स्वीकार करेंगे? केवल आपको शारीरिक सुविधाएं सब दे दी जाएं तो क्या आप सुखी हो सकते हैं? क्योंकि दो बड़ी विचित्र चीज हैं, मैं पैदल जा रहा हूं, कोई आदमी मुझे गाड़ी में बैठा ले, सुविधा लगती है कि मुझे पैदल नहीं चलना पड़ा, गाड़ी में बैठ गया। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद मैं रोने लगा तो क्यों रोने लगा भाई? गाड़ी में बैठने के बाद तो रोने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक आदमी हवाई जहाज में मेरे साथ कहीं जा रहा था, रो रहा था, मैंने कहा क्यों रो रहा है, हवाई जहाज तो बड़ी अच्छी चीज है, बैठने के बाद सुख ही सुख है। बोला मां मर गई उसका हवाई जहाज ला कर देगा क्या? जो दुख है उसको हवाई जहाज मिटा देगा? तो दुनिया की सारे साधन सारे आपके दुख को नहीं मिटा सकते। और दुख किसको होता है? शरीर को, शरीर को नहीं होता। सारे साधन है, शरीर स्वस्थ है, फिर भी आदमी दुखी है। तो दुख सुख की जो अनुभूति है वो शरीर का विषय नहीं है। इसलिए सारे साधन जुटा लेने के बाद भी आदमी दुखी होता है। मैंने शायद आपको पहले दिन एक सूत्र बताया था और ये बताया था कि ये दुनिया में भगवान ने कोई चीज बनाई है तो उसका उपयोग होता है। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो वस्तु बनी हो और उपयोग ना हो। और वस्तु के उपयोग का पता तब लगता है जब उसकी कोई आवश्यकता का समय आता है, कोई समस्या खड़ी होती है जिसका वो समाधान हो। तो आप देखो कि ईश्वर की आपको याद करवाती है, तो ईश्वर को आप याद करना चाहते हो तो एक बड़ी विचित्र बात है। आप ये बताओ, संसार में सुखी होना चाहते हो कि दुखी होना चाहते हो? मैं ये मानकर चलता हूं कि आप कहोगे कि हम सुखी होना चाहते हैं, तो आपका भगवान से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों? कि जो सुखी है उसका भगवान से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सुख का कोई उपाय नहीं है भगवान का। मतलब जिसके पास सुख है उसको भगवान की जरूरत नहीं है। जैसे भोजन किया हुआ आदमी है, उसे कहो जी खा लो जी खा लो जी खा लो जी, वो खाता है क्या? वो कहता है नहीं यार खा चुका मैं। लेकिन भूखा आदमी खाने के लिए दौड़ता है। तो यदि आदमी सुखी है उसे कभी इच्छा नहीं होती। ऐसे अपने यहां एक दोहा तो बना रखा है, दुख में सुमरण सब करें सुख में करे न कोई, सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हो। मैं कहता ये दोहा आधा गलत है। मतलब जो जिसको याद ही दुख में किया जाता है उसे सुख में कौन करेगा? दो भूख 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 ये चिल्लाना तभी संभव है जब भूखा हो, भोजन की जरूरत हो। और बिना भूख के भोजन को कोई देखता नहीं, कोई झांकता नहीं, कोई पूछता नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। तो भगवान के अच्छा होने से क्या होता है? जब तक भगवान की आपके अंदर आवश्यकता न पैदा हो तब तक भगवान अच्छा होगा होगा, रहेगा जा रहना है, मुझे क्या उससे। तो अब बड़ी विचित्र स्थिति है। एक आदमी से पूछा, भगवान को चाहते हो? बोले चाहता हूं। मैंने कहा फिर? मैंने कहा दुखी होना पड़ेगा। बोले दुखी तो नहीं होना चाहता। मैंने कहा फिर भगवान आपको मिलेगा भी नहीं। ये कुछ बिल्कुल इस तरह से है, आप सड़क चलते आदमी को पकड़ के कहो ए भाई साहब ए $10 ले ले, वो कहेगा पागल है, मैं भिखारी हूं क्यों लूंगा? बोले मत ले जा। दूसरा कहता है भाई साहब कुछ पैसे दे दो, $1 दे दो, तो आपकी इच्छा होती है तो एक दे देते हैं। तो मिलेगा कब? जब मांगोगे। मांगोगे कब? जब आवश्यकता होगी। जब आवश्यकता है नहीं, मांगते आप होनी, तो मिलेगा क्यों? क्यों मिलना चाहिए? तो लोग कहते नहीं ईश्वर नहीं मिलता। मिलता क्यों नहीं? क्यों मिले? ना आपको आवश्यकता है ना आपने मांगा है। क्यों? आपसे पूछे चलो ईश्वर के बारे में चर्चा, बोले जी फुर्सत कहां है? अरे बोले मंदिर में। अरे मंदिर में जाएंगे, दुकान पर बैठेंगे, धंधा करेंगे, दो पैसे आएंगे, क्या रखा है इन बातों में? तो आपको जरूरत है क्या ईश्वर की? नहीं है। आप वैसे ही दुकानदारी करते हो, ईश्वर की जरूरत थोड़ी है। तो बिना आवश्यकता के कोई चीज मिल नहीं सकती। और आवश्यकता क्या है? भोजन की आवश्यकता है भूख, पानी की आवश्यकता है प्यास, वैसे ही भगवान की आवश्यकता है दुख। और हम में से कोई दुखी नहीं होना चाहता, और दुख नहीं है तो भगवान की हमें आवश्यकता भी नहीं है। अब सोचना यह है कि क्या बिना दुख हुए ऐसा समय हमारा चल सकता है, या ऐसा उपाय हो सकता है कि हमें दुख हो ही नहीं? कोई कितना भी साधन संपन्न हो, कितना भी स्वस्थ हो, कितना भी अच्छा हो, पर दुख के कारण तो हरेक के पास रहते हैं। उपदेशक होने के नाते मेरे एक विचित्र अनुभव है, जिसको मैं बहुत संपन्न बहुत सुखी समझता हूं, और मुझे उसके निकट जाने का अवसर मिलता है तो मुझे लगता है कि बड़ा दुखी आदमी है। एक अच्छे संपन्न परिवार में गया, मुझे लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने वो बहन जी से कहा, मैंने कहा बहन जी आज सत्संग में दिखाई नहीं दी। उनका भाई साहब ये मेरा बेटा है ना, इसको पता नहीं कोई रोग है, थैलेसीमिया या कुछ रोग है। बोले इस जब से पैदा हुआ है इसको खून चढ़ाना पड़ता है, ये 15 साल का हो गया, हर हफ्ते खून चढ़ाते चढ़ाते। मैंने कहा ये भगवान इसको सुखी कहते हैं? ये सुख है? मतलब कितनी भी संपन्नता हो आदमी सुखी कैसे हो सकता है? वो बहुत लोगों के पास बहुत निकट जाकर देखा, बहुत साधन, बहुत भवन, मकान, दुकान, कार, ये वो सब है, पर दिल में कहीं ना कहीं कोई कसक बच्चे को लेकर, बेटी को लेकर, बच्चों को लेकर, बीमारी को लेकर, असंतोष, दुख जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता। नानक ने कहा है ना, नानक दुखिया सब संसार। आप किसी के भी निकट जाकर देखिए, परतें उघाड़िए, उसका दुख उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये दुख ही ऐसी चीज है जो हमको भगवान से जोड़ता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये योग दर्शनकार कह रहा है। जरा सूत्र याद हो तो बोल दो। आज हमारे हैं नहीं शायद वो योग दर्शन वाले। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोधाच्च, सर्वमेव दुखम विवेकिनः। जो ईश्वर को चाहता है वो क्या देखता है कि इस दुनिया में जिसको देखो दुखी ही दुखी है, दुनिया में कोई चीज सुख देने वाली है ही नहीं। जो एक स्वस्थ आदमी, प्रसन्न आदमी, जिसकी दिनचर्या, जिसके आजीविका ठीक ठाक है, वो आदमी कैसे दुखी है? कहता है परिणाम दुख। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है उसको करने के बाद दोबारा करने की आवश्यकता न पड़े। भोजन कर लिया, अब निश्चिंत हो गए, अब हमें भोजन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो समझदार हैं माँ बाप, वो जानते हैं कि बच्चा 3 घंटे में फिर कुछ मांगेगा, तो उनको उसका उपाय पहले करना पड़ता है। मतलब एक बार खाने के बाद तृप्ति तो हो गई, अब दोबारा नहीं खाना चाहिए। लेकिन ऐसा दुनिया में नहीं है। कितना भी सोने के बाद काम करके फिर सोना ही पड़ता है। दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसका परिणाम दुख ना हो। दूसरी बात कहता है ताप दुख। दुनिया में कोई सुख ऐसा नहीं है जो दूसरे को बिना कष्ट दिए प्राप्त हो सकता। एक बच्चा तब बड़ा होता है जब मां बाप को पूरी तरह से दुखी कर लेता है। नहीं करता हो तो पूछ लो। हमारे यजमान जी कह रहे थे रात को सोने ही नहीं देती हमारी बेटी। हमारी बेटी का बेटा छोटा था, एक दिन फोन आया, तथा हां बोले इसे किसी को दे दे। बोले क्यों? बोले इस रात भर सोने ही नहीं देता, कई दिन हो गए। कोई मां बाप बिना कष्ट उठाए अपनी संतान को नहीं पाल सकते। और कोई संतान खुद बिना कष्ट उठाए मां बाप को सुखी नहीं रख सकती। अब इसमें छोटे से छोटा काम ले लो और बड़े से बड़ा ले लो। आप चाहते हो मेरे बच्चे तो श्रवण कुमार बने, और श्रवण कुमार तो बिना दुख पाए तो कोई नहीं बन सकता। किसी को सुलाने के लिए आपको जागना तो पड़ेगा। किसी का रोना बंद करने के लिए आपको अपना मुस्कुराना तो छोड़ना पड़ेगा। कुछ तो उसके साथ सहानुभूति रखनी पड़ेगी। तो शास्त्र कहता है कि दुनिया में कोई सुख ऐसा नहीं है। आप कहते हो बड़े संपन्न आदमी हैं जी, अपने आप तो एक गिलास पानी भी नहीं लेते। अरे तू नहीं लेता, पर एक आदमी तो लगा रखा है देने को। उसकी जब तक 12 बजी तब तक तुझे क्या मिला? गर्मियों के दिन है, महिला रोटी बना रही है, 12 बजे 1 बजे का समय है, खाने वाले को बड़ा आनंद आ रहा है, पर बनाने वाले से पूछो उसका क्या हो रहा है। आप जानवर से दूध लेते हो, धरती से सामान लेते हो, खेत से कोई चीज लेते हो, मां बाप से लेते हो, साथ पसाथियों से लेते हो, आप किसी का कुछ न कुछ कटौती करके अपना जोड़ते हो। आप में जोड़ता ही तब है जब किसी की आप कटौती करते हो। किसी के सुख को काटने के बाद आपके दुख में सुख आता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि दुनिया में कोई सुख ऐसा नहीं है जो दुख के बिना प्राप्त होता। फिर कहता है संस्कार दुख। कहता है वैसे कुछ भी नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा था। आप यहां बैठे थे, आपको याद आया कि दिल्ली की चांदनी चौक की फलानी दुकान की मिठाई बहुत अच्छी होती है। अब एक बात बताओ, इसका क्या लेना देना है? आपने खाई, आप तृप्त हो गए, अब क्या रखा है? लेकिन कहां तृप्त हुए? टेलीफोन कर रहे हैं, तुम आ रहे हो तो जरा वो लेते आना भाई। संस्कार दुख, हर संस्कार जो है वो फिर पैदा होता है और हमारे लिए परेशानी पैदा करता है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, फिर है गुण वृत्ति विरोध दुख। एक ऐसा विचित्र दुख है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हूं, कोई बात नहीं, पता नहीं कौन संस्कार पैदा हो जाए और किसकी याद आ जाए और मैं रोने लग जाऊं, मेरी मां मर गई थी, कि मेरा बाप मर गया था, कि मेरे साथ किसी ने चोट कर दी थी, कि कोई मेरा लूट ले गया था, कुछ भी लेना देना नहीं, आज वो है भी नहीं, लेकिन पैसे ही याद आई और दुख मेरा प्रारंभ हो गया। तो वो कैसे हो गया? तो कभी मेरे अंदर सतोगुण प्रबल हो जाता है, कभी रजोगुण प्रबल हो जाता है, कभी तमोगुण प्रबल हो जाता है। जैसे ही प्रबल हो जाता है, वैसे वैसे विचार, वैसे वैसे भाव, वैसी परिस्थिति मन में पैदा होती है, वो बिना कारण के हो जाती है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्यों हुई। तो कहता है कि विवेकी मनुष्य यो देखता है, दुनिया में तो सुख सुख चिल्लाते हो, तो हर सुख के नीचे दुख का ढेर पड़ा हुआ है। बोले फिर हमको क्यों नहीं लगता हो? बोले किसी किसी पागल को लगता है, सबको नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बोले ऐसा है कि तंतु जो है आंख में गिर जाए तो चुभता है, तिनका आंख में गिर जाए तो बहुत परेशान करता है, लेकिन लाठी पीठ पर पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी चमड़ी है मोटी, दुख को भी झेलते रहते हैं, सुख की आशा में चलता रहता है, कुछ तो ठीक होगा, कुछ तो ठीक होगा, कुछ तो ठीक होगा, जीवन चला जाता है, ठीक होगा, हुआ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जब इस संसार में दुख है और दुख सुख किसको होता है? शरीर को तो होता नहीं, शरीर को तो सुविधा असुविधा होती है, गर्मी सर्दी लगती है, भूख प्यास लगती है, ये शरीर के काम है। लेकिन दुखी सुखी होना जो है ये काम शरीर का नहीं है, ये आत्मा के है। तो ये आत्मा यदि दुखी है तो इसका भी तो उपाय आपको करना पड़ेगा। शरीर की भूख मिटाने के लिए आप प्रयत्न करते हैं, बड़े बड़े परिश्रम करते हैं और मिटाते हैं। तो मेरे मित्र एक बात बताओ कि ये अंदर का दुख है, ये इसको बिना मिटाए आपका गुजारा हो जाएगा? हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जब नहीं होता ना, क्योंकि आदमी को बुखार हुआ, गोली खा ली, गोली से नहीं गया, डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने दो चार दिन दवा देकर देखा, बोले कुछ गड़बड़ है, परीक्षण करो, परीक्षण करा लिया। वो बोले जी यहां काम नहीं चलेगा, आपको बड़े चिकित्सालय में जाना पड़ेगा। बड़े में गया, था तो कुछ नहीं, यूं कहने लगा ये लगता है कैंसर हो सकता है, जरा जांच करवा ले। अब इतना कहना भर बहुत है, बाकी तो कुछ करने की जरूरत होती नहीं। अब बताओ क्या होगा? अब किसकी याद आएगी? ना अपनी रखी हुई गोली काम देगी, ना डॉक्टर का बताया पर्चा काम आएगा। अमेरिका भागो, इंग्लैंड भागो, वहां जाकर कोई बच जाता हो तो आप तो कभी मरते नहीं, और आपके यहां श्मशान शहर होगा भी नहीं, नहीं है ना? और यदि यहां भी श्मशान है तो दुनिया में बचने की कोई जगह आए नहीं, तब सिवाय आपको भगवान के याद आने के बताओ क्या याद आएगा? औषधम जन्हवी तो यम वैद्यो नारायणो हरि। डॉक्टर कहता है घर ले जाओ, सेवा करो, भगवान से दुआ मांगो, डॉक्टर से बड़ा होता है। क्यों भाई? जो चीज उस दिन आखिर में याद करनी है और काम की है तो पहले याद करने में कुछ घाटा है? शरीर के लिए क्या करते हो आप? जिसकी कल जरूरत है उसे आज समेट कर रखते हो, क्योंकि अनाज 6 महीने बाद साल भर बाद होगा तो साल 6 महीने का इकट्ठा करके रखते हो। बारिश आने वाली है घर बना के रखते हो, चोर आने वाला है ताला लगा कर रखते हो, सारे उपाय अगाऊ करते हो। तो मित्र एक बाहर बताओ, यदि ये दुख सुख भी जरूरी चीज है तो इसका उपाय करने में क्या परेशानी है? इसका उपाय करना क्या मूर्खता है? या इसका उपाय करना बुद्धिमत्ता है? जब आप शरीर के लिए छोटे छोटे जड़ साधनों की इतनी चिंता करते हो, उसके लिए इतना परिश्रम करते हो, तो जो इन सबका मालिक है उसके लिए आपको कितनी चिंता की आवश्यकता है, हम खुद सोच सकते हैं। उपासना किसके लिए करते हो? शरीर के लिए करते हो? शरीर के लिए तो भोजन कर लो, व्यायाम कर लो, बहुत है। उपासना आप शरीर के लिए करते ही नहीं हो, उपासना उस मालिक के लिए करते हो जो इस शरीर का स्वामी है। जिस दिन मुझे ये पता लग जाएगा ना कि इस शरीर में हम दो हैं, उस दिन फिर मैं एक की चिंता करूं और एक की नहीं करूं, ऐसा नहीं होगा। उस दिन मैं इस शरीर की भी चिंता करूंगा और इसके अंदर रहने वाले आत्मा की भी चिंता करूंगा। और इसके लिए उपनिषद ने एक बड़ी मजेदार पंक्ति लिखी है, कभी उपनिषद पढ़ा करो, आपको बहुत आनंद आएगा। मतलब आपकी बहुत सारी समस्याएं, एक छोटा सा योग दर्शन जिसमें मुश्किल से 200 तो पंक्ति हैं, 200 लाइन है कुल, आप अपनी जिंदगी में वो भी नहीं पढ़ सके तो जीवन बेकार है, मनुष्य होना ही बेकार है, कोई अर्थ ही नहीं है। आपने कुछ भी कमाया हो और कुछ भी बनाया हो, यदि आपने वो 200 लाइन पर नहीं पढ़ी है तो बेकार है, आपके जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी आपके काम की चीज आ जाएगी, तो भी आपके समझ में आ जाएगा, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और उसको जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा समाधान मिलेगा। आपको पढ़ना है इस बारे में सत्यार्थ काल के 7-8-9 समुल्लास पढ़ो, योग दर्शन पढ़ो, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का उपासना प्रकरण पढ़ो, आर्य विभिन्न पढ़ो, बाकी जो कुछ आप पढ़ सकते हो आपके पास समय हो तो वो पढ़ो। कम से कम पढ़ो तो योग दर्शन की 200 पंक्तियां पढ़ लो, बाकी तो बहुत कुछ काम चल जाएगा। उपनिषदकार कहता है आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाण्यहयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणो। ये शरीर बहुत ही उत्तम चीज है, इसलिए इसको कहा यह रथ है। रथ रथ मतलब जिसमें रमण करते हुए चले, आनंद मनाते हुए। कैसी गाड़ी है जी? डीलक्स है जी, एक्सप्रेस है जी, इकोनॉमिक है जी, पता नहीं कौन सी क्लास है जी, इससे बड़ी है जी, बिजनेस है जी, फर्स्ट है जी। तो यह रथ शरीर में, संसार में मनुष्य का शरीर जो है बाकी प्राणियों के शरीर के मुकाबले में रथ है। यह रथ में आप बैठे हो, लेकिन आप ये शरीर रथी नहीं है, शरीर तो रथ है। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो लेकिन गाड़ी आपका स्थान थोड़ी ले सकती है। आप गाड़ी की फिक्र करें बुरी बात नहीं है, तेल पानी रख रखाओ उसको सुंदर बनाए अच्छा है, लेकिन बैठने वाला बीमार हो, मरीज हो, नहीं चल सकता हो, गाड़ी क्या करेगी? तो आप गाड़ी की फिक्र करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी वाहन की फिक्र न करो, रथ की चिंता करो, रथी की चिंता न करो। ऐसा कैसा कौन मूर्ख हो सकता है दुनिया में? मतलब घर में घर की तो चिंता है, घर वाला बीमार है तो पड़ा रहने दे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए शास्त्र ये कहता है कि जिस दिन आप एक बात अनुभव कर लोगे कि इस शरीर में दो हैं, उस दिन इस शरीर की चिंता करोगे, लेकिन इतनी नहीं करोगे कि दूसरे को भूल जाओ। अब दूसरा यदि याद आ जाए तो उसकी भी चिंता तो करनी पड़ेगी, और उपासना उपासना कुछ भी तो नहीं है, उसकी चिंता ही तो है। और इसका फायदा क्या होता है पता है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मनु महाराज एक जगह कहते हैं, ऋषयो दीर्घ संज्ञत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुवन्त ज्ञाम यशश्च कीर्तिंच ब्रह्म वर्चसमेव च। हमें आज तक ये तो समझ में आया था कि अच्छा खाना खाने से उम्र बढ़ती है, व्यायाम करने से उम्र बढ़ती है, प्राणायाम करने से उम्र बढ़ती है, लेकिन मनु महाराज कहते हैं संध्या करने से आयु बढ़ती है। आज तक आपने सुना है कहीं संध्या करने से आयु बढ़ती है? लेकिन मनु महाराज कहते हैं तो गलत कहते नहीं। मनु में गलती हो तो यूं समझ लेना दूसरे ने डाली है, मनु की अकल इतनी खराब नहीं है कि वो गलत लिखे। तो मनु लिखते हैं ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुवन्। ऋषि लोग लंबी संध्या करते थे इसलिए उनकी आयु बड़ी होती थी। अब इसका रहस्य क्या है कि बड़ी संध्या करने से आयु बढ़ जाती है, कैसे संभव है? ओम 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 एक घंटा करने से आयु बढ़ जाएगी, लेकिन मनु कहते बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? एक आप विचार करके देख लो, मेरे विचार से तो बढ़ जाएगी। इस संध्या करने का आप सबसे मोटा लाभ क्या होता है, चाहे वह मस्जिद में जाता हो, चाहे चर्च में जाता हो, चाहे मंदिर में जाता हो, चाहे हवन करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, इसका जो एक सबसे बड़ा लाभ होता है वो ये होता है, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है वो तनाव से मुक्त होता है। और आपके रोग और कुछ तो है नहीं, आपका रोग एक ही है, तनाव। हमारे यहां छोटे छोटे बच्चे आजकल कहते हैं टेंशन हो गया जी। क्या हो गया रे? टेंशन वेंशन क्या होता है पता नहीं, टेंशन हो गया, तनाव 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 के अतिरिक्त कुछ नहीं। इस तनाव के लिए गोलियां खाते रहते हैं। एक किताब पढ़ी मैंने अभी पिछले दिन, पढ़ी क्या, थोड़ी बहुत देखी, मैं किसी ने कही तो मैंने मंगाई, ओवरडोज्ड अमेरिका एक पुस्तक है। वो बोले किलो गोलियां खाते रहते हैं, बिना मतलब ही खाते रहते हैं। डॉक्टर ने कहा इसको खा लो, डॉक्टर ने कहा उसको खा लो, डॉक्टर भी ये नहीं सोचता उसको तो दवा बेचनी है और इसको दवा खानी है, खाते रहते। अब मूल बात जो समझने की है कि आपके पास तनाव है तो इस तनाव का उपाय क्या है। तो हमारे ऋषि कोई मूर्ख तो थे नहीं। देखो हमारे ऋषि गलत क्यों नहीं कहते, उसके तीन कारण हैं। उसका एक कारण है ऋषि मूर्ख नहीं है, उसका दूसरा कारण है ऋषि कोई किसी की पार्टी नहीं है। कई बार वकील जज से लायक हो सकता है लेकिन जज का फैसला मान्य होता है वकील का नहीं। वकील कह जी ऐसा है तो वो निमान्य नहीं होता, चाहे कितना ही अकल वाला क्यों नहीं हो, मान्य होता है न्यायाधीश। तो हम क्या हैं, हम सदा पार्टी होते हैं, न्यायाधीश कभी नहीं होते। और जो आदमी पार्टी बनता है वो सदा तनाव में रहता, उसका तनाव से कोई मुक्ति नहीं। इसलिए जब भी मनुष्य मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, मस्जिद वालों का तो पता नहीं मुझे, पर कहीं हमारे धार्मिक लोग जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, तनाव से मुक्ति। और यदि कोई मनुष्य दिन में दो बार तनाव से मुक्त हो जाए तो आप ये बताओ उसके बीमार पड़ने की संभावना क्या है। और जिस समय कोई भी उपासना करता है, परमेश्वर की पूजा करता है, भक्ति करता है, वो तनाव से मुक्त अवश्य होता है। और हमारे ऋषियों ने यह कहा कि भाई दो समय भगवान की उपासना करनी चाहिए, तो उसका मुक्ति आपको कब मिलेगी, स्वर्ग कब मिलेगा वो तो पता नहीं, लेकिन तत्काल जो लाभ होगा आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। मतलब कई बार मंदिर में जाने वाला तनाव से कैसे मुक्त होता है, हालांकि वो जड़ मूर्ति है लेकिन वो अपना अपनी बला उसके सिर पटकाता है, उसके गले में पड़ के रो लेता है, आंसू बहा लेता है, प्रार्थना कर लेता है, तो जो कुछ उसने किया है उसका लाभ तो उसे मिलेगा। और वो जब घर आता है तो बड़ा निश्चिंत होकर आता है, अब तू जाने तेरा काम जाने, ये जो परिस्थिति है ये पैदा जब तक नहीं होगी तो तनाव से मुक्ति कैसे हो। तो इसलिए उपासना जो करने का काम है ये तनाव से मुक्त होने का सबसे बड़ा साधन है, इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। गोली खा के कब तक तनाव से मुक्ति करोगे? दूसरा क्या होता है, डेल कार्नेगी ने एक पुस्तक लिखी है, यहां तो मिलती होगी बहुत, कि जो ईश्वर मानते हैं, ईश्वर विश्वासी होते हैं, वो दो रोगों से बचते हैं। एक तो वो कहता है कि सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक तो निराशा से बचता है आदमी, क्यों? जब तक उसे पता है ईश्वर है तो आदमी कितना भी असहाय क्यों ना हो, उसके मन में यह भाव ही नहीं आता कि उसका कोई नहीं है। नहीं तो आदमी यही सोच के मर जाता है, तेरा कौन है, तेरा कौन है, तेरा कौन है, तेरा यहां कोई नहीं है। मतलब ऐसी परिस्थिति कि मेरा कोई परिचित भी न हो। एक बार एक व्यक्ति ने व्याख्यान दिया तो उसने कहा गरीबी की परिभाषा क्या है? मैंने कहा बताओ क्या है। वो कहने लगा एक व्यक्ति ऐसा हो, ऐसे इलाके में जाए जहां उसकी भाषा ना हो, उसकी भाषा कोई पहचानता जानता ना हो। दूसरी बात ऐसी हो कि उसकी जेब में पैसा ना हो, और तीसरी बात ऐसी हो कि उसका कोई परिचित ना हो। अब बताओ क्या होगा? परिचित कोई नहीं है, पैसा जेब में नहीं है, भाषा आती नहीं है, तो बोले दुनिया में सबसे गरीब आदमी वो होता है। तो दुनिया में सबसे गरीब आदमी होता है जिसके पास कोई है नहीं, जिसका कुछ नहीं है, लेकिन जिसके पास भगवान होता है उसके पास सब कुछ होता है, और जिसके पास भगवान नहीं होता उसके पास सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं होता, वो परेशानी होता रहता है, दुखी होने को पता नहीं कितने विचित्र। एक दुकान पर मैं बैठा था, अप्रैल का था, हमारा बजट सत्र चल रहा था, तो किसी ने कहा लाला जी आज तो आपको फायदा हो गया। क्यों? बोले कुछ माल मंगाया था, बड़े सस्ते में खरीदा था, दाम बढ़ गए। तो लाला जी बोले 10-20 हजार का भी क्या कमाना है, कोई 10-20 लाख होता तो कुछ बात होती, अब उसका क्या करोगे, उसके तो दुख पाने के लिए बैठा है, तो लाख होता तो करोड़ की बात करता। तो मनुष्य जो है कि इतनी सीमा के बाद उसे सुख होगा नहीं गारंटी। फिर सुख होगा कैसे? सुख तो विषय ही बाहर का नहीं है, सुख विषय है अंदर का। जब अंदर का विषय है तो वो शरीर का विषय नहीं है, वो आत्मा का विषय है। तो उसको यदि आप सुखी करना चाहते हो तो बाहर जाके सुखी नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको अंदर ही जाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। दुख सुख अंदर सोचना पड़ेगा। आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, आपने सप्तपदी कराई होगी जरूर, आपका विवाह वैदिक रीति से हुआ होगा। उसमें पहले तो कहता है कि हमको अन्न की ओर देखना चाहिए, फिर हमको स्वास्थ्य की ओर देखना चाहिए, फिर हमें धन की ओर देखना चाहिए, फिर हमें, मतलब ये सारी बातें कह देता है, फिर यूं कहता है हमें सुख की ओर भी देखना चाहिए। मतलब सुख इनसे नहीं आया, न अन्न से आया, न बल से आया, न धन से आया, इनसे नहीं आया। बोले ये तो सब साधन आ गए, बोले सुख के लिए तो अलग चिंता करनी पड़ेगी। और मुझे आज कोई भी व्यक्ति समाज में ऐसा नहीं मिलता जो इनकी तो चिंता न करता हो और सुख की चिंता करता हो, या इनके साथ सुख की चिंता करता हो। इनकी चिंता तो करता है, शरीर की भी कर लेता है, जब बीमार पड़ने लगता है तो शरीर की भी करता है, बल की भी, डॉक्टर कह देता है अब मरने वाला है तो उसकी भी चिंता करता है, धन कमाने की चिंता जीवन भर करता है, लेकिन मयोभवाय की चिंता कभी नहीं करता। और जिसकी चिंता नहीं करता वो हो क्यों, जिसके लिए प्रयत्न नहीं किया वो मिले क्यों? तो यदि आप ये समझते हो कि मुझे तो ईश्वर से कुछ लेना देना है नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी जो केवल उससे मिलती है, उसका कोई उपाय नहीं हो सकता इसके लिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये विधान किया है कि कम से कम दिन में 2 बार आप बैठो और उसको याद करोगे तो अभिमान से भी बचोगे और निराशा से भी बचोगे, आत्महत्या से भी बचोगे और अहंकार से, दूसरों के साथ अन्याय करने से भी बचोगे। कि जब मैंने मान लिया कि मेरे से बड़ा कोई है तो न तो मुझे कभी डर लगता है, और न मैं कभी बड़प्पन से दूसरे पर हावी हो सकता हूं। ये दोनों बातें केवल एक ईश्वर से संभव है और इसका कोई उपाय नहीं। एक वेद का मंत्र है, देखो बड़ा अच्छा सा, सख्येत इंद्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते त्वाम अभिप्रणो नमो जेतारम अपराजित। कि भगवान जिस दिन तू मेरा मित्र हो जाएगा दुनिया में फिर मुझे किसी से भय लगेगा ही नहीं। तो उपासना की आवश्यकता की बात तो ये है और ये एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब ये भी उसी तरह का भोजन है, जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है वैसे ही आत्मा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा होने से आत्मा बलवान होता है, आत्मा निर्भय होता है, आत्मा सुखी होता है। तो इसलिए कोई समझे कि उपासना नहीं करूंगा तो मत करे, लेकिन कभी ना करे तब अच्छा है। आज तो नहीं करूंगा लेकिन कल करनी पड़ेगी तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए उपासना के महत्व का जहां तक प्रश्न है वो तो अनिवार्य है। मतलब मैं कहूंगा तो वो करेगा, मैं नहीं कहूंगा तो नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है, वो झक मार के करेगा ही। और मोटी सी बात ये है, ये जितने मंदिर मस्जिद दुनिया में बन रहे हैं, बने हैं, इनमें लोग जा रहे हैं, ये सब क्या कह रहे हैं कि तुम रास्ता भले ही गलत जा रहे हो पर मजबूरी तुम्हारी जाना है। मंदिर ऐसे नहीं चल रहे हैं, मंदिर के चलने के पीछे कारण दोनों हैं। एक तो मंदिर चलाने वाले को फायदा नहीं हो तो मंदिर चले क्यों, और केवल मंदिर चलाने वाले को फायदा हो और जाने वाले को ना हो तो कोई जाए क्यों। लेकिन महामारी दृष्टि में मंदिर गलत भी है लेकिन बंद भी नहीं हो सकता, वो चलेगा ही, और वो चलेगा जब जब ग्राहक और दुकानदार दोनों हो। दुकानदार हो और ग्राहक नहीं हो तो दुकान क्या चले, और ग्राहक हो दुकानदार नहीं हो तो ले किससे। तो मंदिर में दोनों बात कैसे होती हैं, मंदिर में दोनों बात ऐसे होती हैं कि दुकानदार की तो आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, दुनिया में इससे बढ़िया कोई दुकानदारी है ही नहीं जितनी अच्छी मंदिर है। और सब जगह को एक आपकी भाषा में एक शब्द होता है मार्जिन। आप दुकान करते हो और कोई चीज लाकर बेचते हो तो आपको यह पता होता है कि मुझे कितने में पड़ी है, कितने में बेचनी है, कितना खर्च होगा, कितना बचेगा। लेकिन मंदिर इतनी सुंदर दुकानदारी है, इसके मार्जिन आसमान से भी ऊंचा है। बिना पूंजी लगाए तो व्यापार होता है, बिना जिम्मेदारी के व्यापार होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ग्राहक को माल आपने कैसा दिया है, कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती है और आय की कोई सीमा नहीं होती है। इसका उदाहरण मोटा सा देखना हो, कभी हर की पेड़ी पर खड़े हो जाओ और एक नारियल दुकान से खरीदो और उस पर मूर्ति पर चढ़ाओ, गंगा जी की मूर्ति पर चढ़ गया, फिर वो नारियल कहां जाता है, वापस दुकान में जाता है। और वो कब तक बिकेगा, एक दिन में सैकड़ों बार बिकता है, और जब तक वो घिस के खत्म नहीं हो जाए तब तक बिक सकता है। इससे बढ़िया आमदनी का कोई साधन हो सकता है, तो उसकी विस्तार में नहीं जाऊंगा, वो एक लंबा विषय हो जाएगा। तो ये आदमी जो जा रहा है वहां, वहां क्यों जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है केवल दो कारणों से, केवल दो। ना आदमी मस्जिद में जाए, ना मंदिर में जाए, ना पूजा करे, ना कुछ करे, यदि दो काम उसके पास हो, वो या तो भय से जाता है या प्रलोभन से जाता है, तीसरा कारण नहीं है। एक दिन मैं जयपुर से अजमेर लौट रहा था, मैंने देखा अजमेर में पता नहीं दिए क्यों जल रहे हैं, दिवाली तो है नहीं, दिए ही दिए जल रहे हैं, जिस घर में देखो दिया जल रहा है, समझ में नहीं आया। अगले दिन पूछा मैंने, भाई रात को दिए क्यों जल रहे थे, बोले किसी ने, बाबा ने चिट्ठियां भेजी हैं जगह में, यदि तुम कल दिया नहीं जलाओगे तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। अब उसके दिए से बेटा कैसे बचेगा, लेकिन मन में भय, जिसको देखो दिया जला रहा है या पता नहीं कहीं मर नहीं जाए। तो ये सारा जो मंदिर चल रहा है किस बूते चल रहा है, भय डरा के। यदि आपने भक्त को डरा के नहीं रखा तो आपका मंदिर नहीं चल सकता, डर पैदा करना पड़ता है। प्रलोभन, आपको पता लग जाए कि लॉटरी खरीदी है, सौदा लिया है, कोई चीज खरीदनी है, भगवान दे देगा, तो भीड़ शुरू। कितनी विचित्र परिस्थिति होती है। तो आप इस पूजा में दो कारणों से तो जाते ही जाते हैं, या तो आपके मन में भय है या आपके मन में प्रलोभन है। और जब तक मनुष्य के मन में भय और प्रलोभन रहेंगे ना, तब तक उसे दूसरे की सहायता चाहिए ही चाहिए, उसका कोई उपाय नहीं है, जाना ही पड़ेगा। अब गलत जाए या सही जाए, तो फिर ऐसा करना पड़ेगा ना कि कोई ठीक सी जगह चुननी पड़ेगी, ठीक सा रास्ता चुनना पड़ेगा, ठीक सा उपाय देखना पड़ेगा कि ठीक बन जाए। तो उसके करने के लिए तो आपको जो करना पड़ेगा, जिसे आप उपासना कहते हो और जिसमें बैठने की बात करते हो, उसके लिए केवल एक बात याद रखने की है। कठोपनिषद की एक बड़ी सुंदर सी पंक्ति है, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात परान पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान मैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्व विच्छन। सारा झगड़ा यह है कि हम दुनिया में भगवान को बाहर देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मैं एक बात पूछता हूं, मैंने कहा तुम मंदिर में जाके आंख बंद क्यों करते हो? ये तो अब मूर्खता होगी कि मैं आपके घर आऊं क्यों ऐसा मिलने के लिए, और आंख बंद करके बैठूं क्यों बैठे हो जी, आपसे मिल रहा हूं, मान जाओगे, हो जाएगा ऐसा? लेकिन दुनिया में मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं जाओ, साकार में जाओ, आपकी आंख बंद नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। फिर क्यों हो रही है? क्या ये गलत है? पूजा में, भगवान में याद करने में दो काम सदा होते हैं, हाथ का जोड़ना और आंख का बंद होना। आप कहीं और किसी को देख लेना, भगवान को याद करें और हाथ न जुड़े, नहीं हो सकता। भगवान को याद करें और आंख बंद नहीं हो, नहीं हो सकता। क्यों? भगवान तो बाहर है मंदिर में, आंख क्यों बंद कर रहा? अरे मैंने कहा स्वाभाविक जो है वो देख। मैंने कहा लाइट की दर है तो आप किधर देखोगे? नीचे देखोगे। अरे आपकी दृष्टि कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। फला आदमी कहां बैठा है देखोगे? तो नाम पुकारते वहां देखोगे जहां बैठा है। तो वैसे ही जैसे ही मैं भगवान का नाम लेता हूं तो मेरी दृष्टि कहां जाती है? अंदर, क्योंकि बाहर नहीं है। बाहर है लेकिन मैं नहीं, मेरी पकड़ से बाहर है बाहर, वो पकड़ में कहीं है तो मेरे अंदर ही है, इसलिए तुरंत मेरी आंख बंद हो जाती है, तुरंत मेरे हाथ जोड़ जाते हैं। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात परां पश्यति नान्तरात्मन। ये इंद्रियां तो भौतिक पदार्थों के लिए बनी हैं, तो उनको देखती हैं। बाहर देखना हो तो आंखों से देखो, और उसको देखना है तो भीतर देखो। अमृतत्वम इच्छम कश्चित धीर है, लेकिन सबके बस की बात नहीं है कि वो अंदर देखे। तो कहता है ये अंदर देखना किसी के लिए संभव है, क्योंकि चीज जो है वो बाहर है नहीं, और अंदर देखना उसके उसको देखना, देखने का अभ्यास ही तो उपासना है, और है क्या? कुछ भी तो नहीं है। जो भी आदमी उससे मिलना चाहेगा तो बैठ, जब आंख बंद करके चलेगा तो पैर फैला के तो बैठेगा नहीं, भाग दौड़ तो करेगा नहीं, बोलता चालता तो रहेगा नहीं, क्योंकि जब सिकुड़ता चला जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको समेटता चला जाएगा। एक समय हो गया, एक बात करके बात समाप्त करता हूं। एक हमारे यहां जैन साल थे, वो उन्होंने मुझे बुला लिया, मैंने हवन कराना है, चला गया। मैंने कहा हवन करा, बोले हवन उनकी बात नहीं है, मेरी ये नहीं समझ में आता, तुम्हारा भगवान तो बेकार है, उसके आंख नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, बेकार है, किसी काम का तो है नहीं, फिर तुम निराकार निराकार क्यों करते हो? मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है, जिसके आंख नहीं, जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं, उसका रहेगा भी क्या, बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने कहा जैन साहब आपके घर में कार है? बोले कार एक छोड़ छह है। मैंने कहा फिर उस कार से क्या करते हो? बोले बंबई जाता हूं, कलकत्ता जाता हूं, दिल्ली जाता हूं। मैंने कहा फिर क्या करते हो? बोले बाहर खड़ी करता हूं। मैंने कहा क्यों, आप अपने बेडरूम में कार से क्यों नहीं जाते? अपने बाथरूम में कार से क्यों नहीं जाते? हाँ, आप भोजन करने की जगह कार से क्यों नहीं जाते? बोले पंडित जी बात भी अजब करते हो, कार तो दूर जाने के लिए है। मैंने कहा फिर पैर अंदर जाने के लिए है? पैर अंदर जाने के लिए है, ये आंख अंदर देखने के लिए है, आंख से अंदर देख सकते हो? नहीं देख सकते। पैरों से अंदर नहीं जा सकते। हाथ से कुछ अंदर कर सकते हो? नहीं कर सकते। भले आदमी हाथ पैर आंख नाक बाहर जाने के लिए हैं, और भगवान के साथ मुझे जाना है तो अंदर की तरफ जाना है, क्या करूंगा इनका मैं? नहीं ये मेरे काम आनी है, ना उसके काम आनी है। इसलिए मेरा भगवान बिना आंख पैर का भी बड़ा अच्छा है। तो खैर समय हो गया, लंबी बात मैं नहीं करता। विषय तो बड़ा रोचक भी है, आनंददायक भी है, विस्तृत भी है, और इसकी कोई सीमा कभी समाप्त नहीं होती। हरि कथा, हाँ हरि अनंत है और हरि कथा भी अनंत है। तो यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता, ये इसका स्वारस्य है, यही इसका आनंद है, और यही इसी का नाम उपासना है। और क्या उपासना है, मुझे तो कुछ और पता नहीं, बाकी तो आप देख लो जो आप जानते हो, मुझे तो इतना ही आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आचार्य जी, अब थोड़ा समय प्रश्नों के लिए है, अगर आप कुछ संक्षेप में पूछना चाहें तो 15 मिनट के लिए प्रश्न उत्तर करेंगे।
आचार्य जी, आपने जो बताया उपनिषद के बारे में, उसके लिए एक सवाल है। उपनिषद में जो गहन ज्ञान दिया गया है, लेकिन हमारे कोई हिंदू पढ़ते नहीं है। मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को बताया, वो गुरुदारणिक उपनिषद में जो जनक और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद है, बताते हैं ना कि स्वप्न अवस्था संधि काल पर है, ये जन्म और दूसरे जन्म वहां सब देख सकते हैं, और वो किधर है संधि का नंबरी में वो भी लिखा है। मैंने बोला गुम लोग इतने न्यूरोलॉजिस्ट इधर हमारे इतने इतने डॉक्टर है, कुछ रिसर्च कुछ नहीं करते। ऐसी तरह प्रसन्न उपनिषद में सब बताते हैं, ऐसी तरह हमारी प्राण शक्ति काम कर रही है अंदर, वो अपने मेडिकल साइंस से भी बहुत आगे हैं, लेकिन कोई डॉक्टर को देखते नहीं है। तो इतनी उदासीनता हमारी हिंदू में क्यों है? ये भक्ति और आगे बढ़ा इसलिए वो उपनिषद और वेद को सब भूल गए कि क्या? तो ये उदासीनता कैसे दूर कर सके? दूसरा सवाल मैं बाद में पूछू।
ऐसा है कि क्या होता है, जो ज्ञान बताने से आता है, देने से आता है, वो देने से ही आता है, उसका विकल्प नहीं होता। जानने वाला जब तक बताए नहीं, या उसके बारे में सुना न हो, उसके अंदर जिज्ञासा नहीं, तो ये बात हो नहीं सकती। पहले तो इसके जानने वाले ही नहीं है। अच्छा मान लो मेरे जैसा कोई थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो मुझे साइंस वाइंस का पता नहीं है, साइंस वाले को भाषा नहीं आती है, उस मूर्ख को मैं किताब दे भी दूंगा तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूं, हमारे यहां एक पुस्तक है बृहद विमान शास्त्र, वो आज से कोई 40-50 साल पहले जो तंजावुर की लाइब्रेरी है मद्रास की, वहां कोई लेख मिला था, भारद्वाज यंत्र सर्वस्व नाम की कोई किताब थी, उसका वो 32वां अध्याय, मतलब आगे कितने थे पीछे कितने पता नहीं। और इंजीनियरिंग के नाते हमारे हरिश्चंद जी को मालूम होगा कि उसकी वस्तु स्थिति क्या है, उसमें हवाई जहाज कैसे बनने चाहिए, कितने उसकी वो उसके उसका ईंधन क्या होना चाहिए, पारे से चलते हैं ऐसा उसने लिखा है, किनसी मिट्टी से बनते हैं, तीन तरह के होते हैं, समुद्र में चलते हैं, धरती पर चलते हैं, आसमान में चलते हैं, दूसरे लोकों में चलते हैं जाते हैं, ये बात आज तो लगता है कि हो सकती है। और आजकल ऐसे हवाई जहाज बन रहे हैं कि पानी पर भी चले और धरती पर भी चले। तो ये जो ज्ञान था, और ये ज्ञान जब हमने प्रकट किया सबसे पहले, तो लोगों ने इसमें पता है क्या निकाला, बोले जी इसमें गणपति की स्तुति है, कमाल है। अंत में वो हमारे ब्रह्म मुनि जी के हाथ में आया, उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद किया, तो भारत सरकार ने उसको जानने से मना कर दिया, रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया, उन्होंने मना कर दिया। हाँ अमेरिकन दूतावास का व्यक्ति उनके पास जरूर आया कि आप हमारे साथ मिलकर काम करो तो हम आपकी सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि यह शायद मेरे देश के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं करता। तो चीज क्या है कि जब तक उसका हमको पता ना हो, तो हम ना उसको जान सकते हैं ना उसको बता सकते हैं। तो उपनिषद है, कितने लोग जानते हैं, जानते हैं वो कितने बता सकने में समर्थ हैं। हमारी समस्या क्या है कि हमारे को रास्ता ही भटका दिया है और रास्ता ही दूसरा दे दिया कि यहां चलो। अब ये बताओ दूसरे रास्ते जाके इस गांव कैसे पहुंचे, ये हमारी मूल समस्या है। अब इसको यदि आप कहो कि कुछ लोग करें तो क्यों करें और कैसे करें? भाई आदमी को साधन चाहिए और ज्ञान चाहिए, दोनों को देने वाली ना तो संस्था है ना कोई व्यक्ति। ऐसा हो सकता है व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता, संस्था सरकार करती नहीं, तो सिवाय हमारे पल्ले अनपढ़ होने के और हो क्या सकता है। मैं तो कभी कभी अपने को इसीलिए भाग्यशाली मानता हूं, चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन मुझे एक ऐसी दिव्य दृष्टि है कि मुझे ये पता है कि मैं किसी बहुत बड़े ज्ञान भंडार को अनुभव कर सकता हूं। उसको मैं जानता हूं ये तो मैं नहीं कहता, मैं उसे जान सकता हूं ये भी नहीं कहता, मेरे पल्ले उसमें कुछ पड़ता है ये भी नहीं कहता, पर इतना जरूर कहता हूं कि जिसको बहुत लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे ज्यादा मुझे मालूम है कि यहां है। लेकिन ये भाग्य से किसी ने मुझे दिया है, संयोग से मुझे मिला है, परंपरा से कुछ मिला नहीं है, कहीं भी कोई जाकर किसी को देता नहीं है, संयोग से आर्य समाज का व्यक्ति है परिचित हो सकता है, आर्य समाज का कोई विद्वान है गुरुकुल में पढ़ा है परिचित हो सकता है, लेकिन हमारी व्यवस्था में इसका कोई स्थान नहीं है, इसलिए यह होगा नहीं। मेरा तो यह कहना है, आप बताओ क्या हो सकता है।
धन्यवाद। दूसरा प्रश्न लेंगे।
आचार्य जी मेरा प्रश्न है कि हमें ऐसी विधियां बताइए जिससे हम परमात्मा की तरफ बढ़े, कैसे उनसे उनका प्यार रोज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए।
एक व्याख्यान का विषय है, यह करवा दो दूसरा। अच्छा इसमें देखो सीधी सी बात है, योग दर्शन तीन सूत्रों में है। योग दर्शन तो पढ़ा है, चित्तेश्वरान जी पढ़ाते हैं। अब ऐसे योग दर्शन में कितने सूत्र हैं? 194 सूत्र, लेकिन मेरे हिसाब से योग दर्शन तीन सूत्रों का है। पहला है योग कहते किसे हैं, योग है चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के व्यापार को रोक सकना, यह योग है। दूसरा सूत्र है ऐसा करने से क्या होगा, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थाना, तब बाहर देखना बंद हो जाएगा तो भीतर दिखने लगेगा और क्या होगा। आप बांध को पानी को इधर से रोक दोगे तो जिधर नीचे है उधर चला जाएगा, इसके लिए योगदर्शन का सूत्र याद करो, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग्भारम चित्तम। कहता है जब विवेक से आप बाहर की वृत्ति को रोक देते हैं तो पानी की आदत है जिधर नीचा है उधर चल देता है, आपने इधर ऊंचा कर दिया तो नीचा उधर चला जाएगा, तो बाहर आपने ऊंचा लगा दिया तो नीचे की तरफ अंदर चला जाएगा। तदा विवेक निम्नम, विवेक की तरफ निम्न होकर के प्राग्भारम चित्तम, जिधर वजन बढ़ गया उधर चला गया, वो नीचे हो गया। तो इसलिए दूसरा सूत्र है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, जिस समय आपके मन की वृत्तियां रुक जाएंगी उस दिन आपको अपना साक्षात्कार हो जाएगा, और ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। तो तदा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तो जैसे हो दुनिया में वैसे जियोगे, अच्छे हो बुरे हो डाकू हो साधु हो, तो जैसी वृत्ति में रहोगे वैसे रहोगे। ये कुल तीन है योग दर्शन का सूत्र और कुछ नहीं है। योग क्या है, योग से क्या होता है, और योग नहीं करने से क्या होता है। योग क्या है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, योग करने से होता क्या है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, नहीं करोगे तो क्या होगा, वृत्ति सारूप्य, ये योग है। अब इसमें एक बात करने की क्या है, आप योग करते हो प्रातः काल और सायंकाल कितने देर, 2 घंटे, तो इसका मतलब योग का समय तो 2 घंटे हुआ ना, और बाकी जो 10-20 घंटे हैं वो योग का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। तो आप एक कल्पना करो कि मैं यहां से भारत की तरफ चलूं और रोज 2 घंटा तो हवाई जहाज में भारत की तरफ उड़ूं और 8 घंटे उल्टा उड़ूं, कितने दिन में पहुंचूंगा, पहुंच तो जाऊंगा ना भाई। सवेरे मैं साधना करूंगा भगवान से मिलूंगा, 2 घंटे मैं साधक हूं उपासना करता हूं, और दिन में जेब काटूंगा, ठगी करूंगा, तो मैं कितने दिन में पहुंच जाऊंगा? पहुंच जाऊंगा ना। तो योग जो है ना दो घंटे का नहीं होता। योग को देखो कितने भागों में बांट सकते हो, आपने सवाल पूछा है तो बताता हूं। अकेले करने का योग, चार आदमियों में परिवार के साथ करने का योग, समाज में देश में करने का योग है योग। ये नहीं है कि जो सवेरे किया वो योग है, दिन में किया वो योग नहीं है। यदि ऐसा होता तो योग के आठ अंगों की जरूरत नहीं थी। एक आदमी मुझे बेंगलोर में मिला, बोले मेरे गुरुजी तो बहुत समझदार हैं जी। क्या है? बोले वो आठ अंगों के चक्कर में ही नहीं पड़ते, वो तो तीन से ही काम चलाते हैं, धारणा ध्यान समाधि। मैंने कहा तू बहुत ही बढ़िया, तेरे बापू तेरे गुरुजी उससे भी बढ़िया है जो बिना नींव का मकान बनाते। बोले जब ऊपर की छत बनानी है तो नीचे का क्या करना है, ऊपर ऊपर बना लो, बन जाएगा। तो इसलिए आप यूं समझो कि धारणा ध्यान समाधि कर लेंगे तो पतंजलि पागल था जो आठ अंग लिखता है, तीन ही लिख देता। तो इनमें देखो, धारणा ध्यान समाधि तो आप आंख बंद करके करोगे, कोई बात नहीं। आसन प्राणायाम तो आंख खोल के करोगे, और यम नियम कैसे करोगे? उसके लिए आसन लगाना पड़ता है, वो कैसे करोगे? तो सवेरे से शाम तक जो योग करते हो वो यम नियम है, जो बैठकर योग करते हो वो आसन प्राणायाम है, और जो आंख बंद करके योग करते हो वो धारणा ध्यान समाधि है। हैं चारे योग। मैं मजदूरी करता हूं, ये योग है। मैं नौकरी करता हूं, ये योग है। मैं खेती करता हूं, ये योग है। मैं फौज में लड़ता हूं, योग है, क्योंकि उस योग में यम नियम सम्मिलित हैं। यम नियम के बिना कोई व्यवहार व्यापार हो सकता है? तो यम नियम यदि योग हैं तो मेरे जीवन का हर काम योग है। हर काम में यदि यम नियम सम्मिलित हैं तो मैं योगी हूं। और यदि मेरे खाने में, बढ़ने में, जाने में, करने में, तोड़ने में, देने में, लेने में यम नियम नहीं है तो मैं योगी नहीं हूं। तो मैं जब अकेले आंख बंद करके बैठता हूं तो मैं बहुत तीव्र गति से चल रहा हूं परमेश्वर की तरफ। जब मैं हवन करके घर में चार लोगों के साथ बैठता हूं, योग मैं तब भी कर रहा हूं, लेकिन तब मैं योग आंख खोल के कर रहा हूं। और जब मैं व्यापार कर रहा हूं, कार्यालय में काम कर रहा हूं, फौज में लड़ रहा हूं, योग मैं तब भी कर रहा हूं, लेकिन तब मैं यम नियम सबके साथ मिलकर कर रहा हूं। तो मेरा योग 24 घंटे की दिशा एक रहती है, गति मंद और तीव्र हो सकती है। मैं यहां से वहां चलूंगा तो रस्ते में सोऊंगा तो सो जाऊंगा, रस्ते में बैठूंगा तो बैठ जाऊंगा, दौड़ूंगा तो दौड़ लूंगा, लेकिन दिशा नहीं बदलूंगा। तो कभी न कभी मैं पहुंच जाऊंगा। और मैं दिशा ही बदलता रहा और दौड़ लगाता रहा तो फिर नहीं पहुंचूंगा। तो इसलिए योग जागृत अवस्था का, योग परिवार का, योग समाज का, करने आपको तीनों हैं। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करेंगे यही तरीका आसान है। सामान्य जीवन में यम नियमों का पालन करना है, और वैसे आसन प्राणायाम प्रत्याहार करना है। आगे की चीज अपने आप होती है, वो बहुत करने से नहीं होती। ठीक है, चलेगा।
मैं तो सोच रहा था कि हमें देरी हो रही है, पर अभी पता चला कि भोजन को आने में देरी है।
हाँ,
प्रश्न का समय है, तो आप जो भी प्रश्न करना चाहें कृपया पूछें, और आचार्य जी तो प्रश्नों के उत्तर के लिए तैयार। प्राइवेटली पूछेंगे, ठीक है।
आत्मा का भोजन क्या है? आपने उल्लेख किया अभी आपके इसमें कि आत्मा को भी भोजन चाहिए, तो क्या है भोजन?
अच्छा एक बात सुनो, शरीर का भोजन क्या है?
शरीर का जो खाना है, जो प्रोटीन है,
ये शरीर का भोजन क्यों है? ये भोजन शरीर का क्यों है? क्योंकि शरीर
स्वस्थ
ना इनसे बना है। शरीर इनसे बना है, इसमें जो कमी होती है उसे आप उसी से पूरा करते हैं, इसको आप भोजन कहते हैं। ठीक है, अब आत्मा किससे बना है? किसी से नहीं बना है, फिर उसको भूख क्यों लगती है? भूख किसका नाम है? कमी का। तो फिर आत्मा में कमी है कि नहीं है? तो वो कमी किससे दूर होगी बताओ? तो उसका भोजन क्या हुआ? फिर उसका भोजन क्या हुआ? भाई जो चीज जिससे बनी है, जैसी बनी है। अच्छा, इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। छांदोग्य उपनिषद निकालना और उसका आठवां प्रपाठक है। लंबी कहानी है, उस लंबी कहानी में तो नहीं जाता, लेकिन वाक्य बड़ा प्यारा है। वो ये कहता है कि आत्मा कौन है, आत्मा ये सत्य से है, ये क्यों ऐसा होता है। तो वहां एक वाक्य है, कहता है कि ये जो आत्मा है कैसा है? बोले अमृत है, अर्थात ये मरता नहीं। मघवन मर्त्यम वा इदम शरीरम, मघवा कहते हैं इंद्र को, इंद्र का संबोधन है। मघवन मर्त्यम वा इदम शरीरम, ये शरीर तो मरण धर्मा है, नष्ट होने वाला है। किंतु अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम, ये अधिष्ठान है, स्थान, सहारा, आधार। किसका? अमृतस्य अशरीरस्य आत्मना, जो मरता नहीं है, जिसका शरीर नहीं होता है, जो आत्मा है उसका ये शरीर क्या है? अधिष्ठान है, उसके टिकने की जगह है। तो वही कहता है कि देखो, अच्छी तरह समझ लो, मघवन मर्त्यम वा इदम शरीरम, अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठान, सतः शरीरस्य प्रिया प्रिय स्पृशतः। जब तक ये सशरीरी है इसके सुख दुख नहीं मिट सकते। अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, और जिस क्षण ये शरीर से भिन्न हो जाएगा उस दिन इसको कोई सुख दुख छू कर भी नहीं जा सकता। तो बोले पता कैसे लगेगा? पता कहता ऐसे लगता है कि इस संसार में बादल है, इस संसार में बिजली है, इस संसार में बारिश है, इस संसार में गर्जन है, कड़क है, लेकिन ये प्रकट कब होती है? आसमान में तो हर समय है, प्रकट तब होती है जब ये अपने मूल कारण तक पहुंचती है, सूर्य के प्रभाव में आती हैं। जब सूर्य का प्रभाव काम करने लगता है तो ये सारी चीजें प्रकट होती हैं। वैसे ही ये आत्मा जो है ये कब प्रकट होता है? बोले जब ये परमात्मा को छूने लगता है, जैसे उसमें प्रकाश में नीचे की चीज दिखती है, तो वैसे ही जब आत्मा परमात्मा के प्रकाश में अपने को देखता है तब क्या देखता है पता है? वहां एक उदाहरण बड़ा रोचक दिया है। कहता है ये बात तब हो सकती है जैसे कोई दो चीज हो, और दो चीजों में साथ रहने वाली चीजों में यो समझो कि घोड़ा तांगा, आपके यहां तो होता नहीं, बैल और गाड़ी, लेकिन भारत में तो होती है, देखी है आपने। कभी बैल ने यह समझा है कि मैं गाड़ी हूं? या गाड़ी का पहिया टूट जाए तो बैल रोया? कभी नहीं। उसने कभी भी अपने को गाड़ी से जोड़ा नहीं, आपने उसे जोड़ रखा है। तो जैसे घोड़ा जो है वो तांगे को आप स्वयं नहीं मानता, जिस दिन आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि शरीर से आप अपने आप को उतना ही अलग देख सको जितना घोड़ा तांगे को अपने से अलग देखता है, वो कब होगा? वो तब होगा जब आप उसके साथ होंगे, तब ये अलग दिखेगा, जब तक इसके साथ नहीं ये अलग नहीं दिखेगा। इसलिए किसका भोजन कौन हुआ आप देख लो, शरीर का भोजन भौतिक है तो भौतिक होगा, और आत्मिक का भोजन आत्मा से होगा, वो भौतिक नहीं होगा। जो चीज जिसके पास कम है उसको वहां से लेनी है। तो शरीर को जो कम है वो दुनिया से मिलेगा, लेकिन आत्मा में जो कम है वो परमात्मा से मिलेगा। ठीक है,
आचार्य जी हम पुनर्जन्म की बात करते हैं हमेशा, हम बच्चों को कैसे बताएं और स्वयं को कैसे कहें कि कोई आत्मा आज तक किसी आत्मा ने आकर कहा कि मैं उस शरीर में थी और आज मैं आपके शरीर में हूं।
चलिए करते हैं विचार। अच्छा एक बार ये मान लेते हैं कि हमारा कोई पहला जन्म नहीं था, क्या नुकसान है? हमारा कोई पहला जन्म नहीं था ऐसा मानने में क्या नुकसान है? कोई नुकसान तो नहीं है ना? है। यदि हमारा पुनर्जन्म नहीं होता तो हम एक जैसे होते, सुख में दुख में साधनों में स्वरूप में ज्ञान में बल में बुद्धि में, क्योंकि जो चीज जिस सबको एक साथ मिल रही है वो अलग अलग क्यों देगा कोई? हम बच्चों को दौड़ लगवाते हैं तो एक पंक्ति में खड़ा करते हैं कि अलग अलग खड़ा करते हैं? एक ही पंक्ति में खड़ा करते हैं ना, सबको बराबर खड़ा करते हैं तब हम दौड़ने के लिए कहते हैं। तो यदि दुनिया की दौड़ में पहला दिन होता हमारा और हम सबका ही पहला दिन होता तो हमारा किसी भी तरह से अंतर नहीं होता, और अंतर है तो क्यों है आप पूछ लो, या तो बनाने वाला बेवकूफ है जो किसी को कुछ भी बनाता है, या इसके पीछे कोई उचित कारण है। क्योंकि संसार में व्यवस्था है तो व्यवस्था के पीछे तो कारण होता है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो प्रमाण हमारे पास है वो ये है कि जो मैंने नहीं किया उसका फल मुझे क्यों मिल रहा है, अच्छा या बुरा, किसी को सुविधा और किसी को असुविधा क्यों, मतलब मेरे कारण से मैं सुविधा असुविधा पाऊं उसकी जिम्मेदार मैं, लेकिन जिसका जिम्मेदार मैं नहीं वो मुझे क्यों, तो ये किसने दिया और क्यों दिया? या तो उसने गलत किया, क्या वो गलत कर सकता है? यदि गलत करना उसका स्वभाव होता या वो बेवकूफ होता तो कर सकता था, लेकिन इतना बड़ा संसार जिसने बनाया जब इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो मेरे बनाने वाले को मेरे में त्रुटि कैसे हो सकती है? तो इसलिए सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारा सबका सब कुछ अलग अलग है, और ये सब कुछ अलग अलग हमारा आज बिना किए पैदा होने के साथ है। तो इसका एक पता लगता है कि व्यवस्था के अनुसार ये ऐसा हुआ है तो हम सब कहीं पीछे से कुछ करते हुए आ रहे हैं जो आज अलग अलग हैं। एक पुनर्जन्म में चीज ये होती है कि आदमी के जीवन में कोई अनुभव होता है तो उस अनुभव से लाभ या हानि भय या सुख जुड़ता है। मैंने कोई सामान कहीं बेचा और मुझे लाभ हुआ तो दोबारा मैं वहां बेचना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है यहां ठीक है। घाटा हुआ तो मुझे लगता है नहीं, कहीं मुझे सांप ने काटा हो तो मैं सांप को देख के डरता हूं, बिच्छू ने काटा तो मैं बिच्छू को देख के डरता हूं, मेरे पास अनुभव है। तो एक आदमी बिना मरे मरने से क्यों डरता है? आदमी मरने से तो डरता है लेकिन मरा तो नहीं है, इस जीवन में कब मरा है? मरा ही नहीं, फिर मरने से क्यों डरता है? क्योंकि ये बहुत बार मर चुका है, इसको मरने का अनुभव है इसलिए मरने से डरता है। तो ये मरना कब हुआ होगा? इस जीवन में तो हुआ नहीं, पहले में। तो कोई पशु है कोई मनुष्य है, क्यों? आत्मा तो सबका एक सा ही है, अनुभव सबके एक से हैं, अंतर क्यों? कोई कारण होगा, कहीं स्वतंत्रता है कहीं परतंत्रता है, कहीं एक इंद्रियां हैं कहीं दो हैं कहीं चार हैं, कहीं मनुष्य के पास पांच हैं, क्यों? अंतर है। तो ये जो अंतर है ये बता रहा है कि हमारी ये यात्रा पहली नहीं है और ना अंतिम है। हम यात्रा के बीच में हैं। जैसे कोई आदमी आप यात्रा के लिए निकलो तो कुछ लोग आपसे पहले चल रहे होते हैं, कुछ लोग आपके पीछे आ रहे होते हैं, तो ये प्रवाह है, चलता है। और इससे पता लगता है कि इस प्रवाह में हम यहां हैं तो कल वहां थे और कल वहां होंगे। इसी का नाम पुनर्जन्म है।
और प्रश्न कोई है तो बोलिए। तो एक प्रश्न मेरा है।
हाँ जी बताओ।
ऐसे उसके संदर्भ में एक चीज कहना चाहता हूं। पिछले हफ्ते कोई प्रोग्राम देख रहा था मैं, तो उसमें एक बड़े प्रसिद्ध संगीतकार हैं भारत के, तो उन्होंने एक चीज कही वो मेरे दिल को लगी। उन्होंने कहा कि मैं जब भी अपनी अपना आलाप करता हूं और संगीत करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं, तो वो मेरी उपासना होती है। तो मुझे लगा कि बड़ा अच्छा है कि उपासना के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसलिए प्रश्न ये है कि उपासना का समय, जगह और तरीका कौन सा सबसे अच्छा है, या कोई भी अच्छा है?
नहीं, ऐसा नहीं। आप ऋग्वेद का पहला सूत्र पढ़े हो ना, वो तो सबको पता ही होगा। पहला मंत्र कौन सा है? अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। ये पूरा सूत्र आपकी उपासना का सूत्र है। और उपासना का सबसे बढ़िया समाधान जो है वो एक मंत्र है, याद कर लेना भले ही उसे। उपत्वाग्नि दिवि दिवि दोषा वस्तर धिया वयम नमो भरंत ए मसी। परमेश्वर है अग्नि, संबोधन है। जड़ वस्तुओं को संबोधन नहीं होता, संबोधन सदा चेतन को होता है। तो यहां का है अग्नि। तो अग्नि कौन है? यहां परमेश्वर। त्वा उप ए मसी, त्वा तुझ तक, उप समीप, ए मसी आते हैं, हम तेरे समीप आते हैं। हे अग्नि, हम तेरे समीप आते हैं। ये समीप जाने का जो यत्न है इसका नाम है उपासना। तो वो कैसे जाएं? कहता है कि दोषावस्था, दिवे दिवे, नमो भरंत, तीन शब्द है। भगवान के पास जाना है, एक दिन जाने से काम नहीं चलता कि मेले में चले जाएंगे, कि वो जो नवरात्र आएंगे उस दिन चले जाएंगे, कि किसी त्योहार में चले जाएंगे, नहीं। दिवे दिवे, दिन प्रतिदिन, हे प्रभु हम तेरे पास आते हैं, आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? दिन प्रतिदिन आ रहे हैं, बिना किसी व्यवधान के प्रतिदिन आ रहे हैं। तो क्या फिर 24 घंटे करते रहे? कहते ना, कहते हैं ना, वो खुदा ने नमाज बख्शी तो 24 बार की बख्शी थी, कि 24 घंटे होते हैं तो हर घंटे में एक बार आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो सारे इकट्ठे होके बोले महाराज कुछ सोएंगे तब, जब हर घंटे ही नमाज पढ़ेंगे? तो उसने कहा चलो 12 कर दी। बोले जी फिर भी दो दो घंटे में पड़ेगी? तो उन्होंने कहा 5 कर दी। 5 के बाद गए बोले ज्यादा किए तो 24 लगेंगे। तो 5 तो उनको करनी पड़ती है, और हमारे हिसाब से तो फिर उपत्वाग्नि है तो 24 घंटे करनी पड़ेगी। वो उनका तो घंटे में एक बार था, हमारा तो एक घंटे में एक बार का काम चलता नहीं, हमको तो लगातार करना पड़ता है। तो क्या फिर हम उपासना ही करते रहेंगे? कहते नहीं, दोषावस्था। दोषा कहते हैं रात्रि को, अवस्था कहते हैं दिन, दिन और रात, दिन और रात, और रात और दिन जहां मिलते हैं उसका नाम संधि काल। और संधि काल में किया जाने वाला काम संध्या। तो उपासना का समय क्या हुआ? संधि काल। संध्या शब्द के दोनों अर्थ हैं, सम्यक ध्यान ये भी संध्या, और संधि में किया जाने वाला काम ये भी संध्या। तो मुझे संध्या करनी है दिन प्रतिदिन करनी है, एक मुझे संध्या करनी है दोषावस्था प्रातः काल और सायंकाल करनी है, और कैसे करनी है, दौड़ते हुए करनी है, व्यायाम करते हुए करनी है, वो खड़ा हुआ बैठा फिर लेटा हाँ, या नाचते कूदते करनी है। कहते नमो भरंता, नमस्कार पूर्वक करनी है, नम्रता पूर्वक करनी है, समर्पण पूर्वक करनी है, तब ये उपासना बनती है। इसके लिए एक उदाहरण देखो, उपासना के प्रकार हैं, यदि योग को आप समझें विस्तार में तो आठ शब्दों में, थोड़ा संक्षेप में समझो तो तीन शब्दों में, और बिल्कुल ही छोटा समझो तो एक शब्द में। कैसे? आठ शब्दों में तो हमें पता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये आठ शब्दों में योग है। विस्तार से जब समझाना है, संक्षेप में समझाना है तो कैसे समझाएंगे? तीन शब्दों में। योग दर्शन के दूसरे पाठ का पहला सूत्र, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, तीन शब्दों में विक्रिया योग, क्रियात्मक योगाभ्यास, तीन शब्द हैं, तप है स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, एक शब्द में योग, एक शब्द में योग। याद करो पहले अध्याय का सूत्र है ईश्वर प्रणिधानाद वा, मतलब वो समाधि की सिद्धि कैसे होती है उसका प्रकरण चल रहा है, ऐसा करने से ऐसा करने से ऐसा करने से, तो अंत में कहता है ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर प्रणिधान करने से। इसका मतलब एक शब्द में योग या उपासना है ईश्वर प्रणिधान, तीन शब्दों में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, आठ शब्दों में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आठ। तो हमारा जो उपासना का समय है वो प्रतिदिन है, प्रातः सायं है, और नम्रता पूर्वक है, ज्ञान पूर्वक है, और वो स्थान, कोई भी उपासना करना हो तो उसका एक तरीका बताता हूं मैं आपको, वैसे तो ज्यादा तो हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन मोटी बुद्धि की बात मैं बता दूंगा आपको। आप उपासना में जाना चाहते हैं, पहली चीज है स्थान, आपका स्थान निश्चित होना चाहिए, दूसरा आपका समय निश्चित होना चाहिए। यदि आप उपासना करना चाहते हैं, दो चीजें आपके पास हो गई तो आगे चीजें आसान है, क्योंकि जैसे भोजन का समय होते ही आपको भूख सताती है, ऐसे ही उपासना का समय होने पर आपको भूख सताए, आपको लगने लगे कि कुछ छूट रहा है, बैठने की जरूरत है, तो निश्चित स्थान निश्चित समय दो। उसके बाद आप जब करें ना, तो सबसे पहली चीज की आती है, और सब जगह तो आपको चंचल होना पड़ता है, वो ऐसा करो जी वैसा करो जी, नाचो जी गाओ जी उठो जी बैठो जी, ना यहां क्या है, निश्चलता की शर्त है, और उसका प्रारंभ होता है आंख के बंद करने से। आप उपासना में बैठना ही चाहते हैं तो आप ये अभ्यास देखो कि आप कितनी देर आंख बंद रख सकते हो, ये बड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि आंख बंद रहती नहीं है। आप उपासना करने बैठे दरवाजे में घंटी बजी तो तुरंत आपका ध्यान उधर जाता है, लेकिन धीरे धीरे यदि कोई इसमें जाता है तो ध्यान छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है, जो बाहर का संबंध कट जाता है। और जैसे ही आपकी आंख बंद करने का अभ्यास होगा तो आपके मन में परिस्थिति दो पैदा होंगी, या तो आपको नींद आ जाएगी या आपको समय का बोध समाप्त हो जाएगा, दोनों में से एक जरूर होगा। नींद आएगी तो भी समय समाप्त हो जाएगा, आके व्याख्यान में बैठे आंख लगी शांति पाठ के साथ उठ गए पता ही नहीं लगा, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इतना सुना बंद हुआ तो लगा क्या हुआ, बंद कैसे हो गया, ऐसा भी लग सकता है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं, एक में तमोगुण है एक में सतोगुण है। जब तमोगुण है तो आदमी पानी में डूबता है, और सतोगुण है तो आदमी पानी पर तैरता है। तो ज्ञान की जो परिस्थिति है वो तैरने की है, और नींद की परिस्थिति डूबने की है। घाटा दोनों में नहीं है। कोई कहता है नींद आती है तो मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। स्वामी दयानंद से प्रश्न पूछा गया, बोले जी हम नाच देखते हैं, गाना सुनते हैं, फिल्म देखते हैं तो हमको घंटों नींद नहीं आती, आई भी चली जाती है, और भगवान का भजन करते हैं तो तुरंत नींद आ जाती है। तो स्वामी जी कहते हैं कांटों पर नाचने से नींद आएगी कि गोद में सोने से आएगी? जब आप नाच रंग देखते हैं तो आपके अंदर के जो भाव हैं वो उत्तेजित होते हैं, तब नींद कैसे आएगी? नींद तो तब आएगी जब शांत हो, तो अच्छे से गद्दे पर ना आराम से छाया में भी आप लेट गए थके हुए तो आपकी नींद को कौन रोक लेगा? तो इसलिए यदि उपासना में नींद आती है तो परमेश्वर की गोद में नींद आ गई तो आएगी, उसमें क्या बात है? वो कोई पहले स्तर पर घाटे का सौदा नहीं है। धीरे धीरे जैसी चेतना जागृत होगी प्राथमिकता पर लगेगी, जरूरत लगेगी, तो जरूरत जब मन में होगी तो फिर नींद नहीं आएगी, फिर काम याद आएगा। उस समय क्या होगा? आनंद का अनुभव होगा। नींद में सुख तो होता है लेकिन तामसिक होता है, समाधि में सुख होता है लेकिन सात्विक होता है। तो जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा आपकी नींद घट जाएगी, और उसकी कसौटी एक है, समय का बोध ना होना। आप बैठे उठे तो यूं लगा यार अभी तो बैठा था, इतनी जल्दी कैसे बीत गया समय। यदि ये स्थिति आपकी है तो यूं समझना चाहिए कि रास्ता ठीक है, ठीक चल रहे हैं, और ये स्थिति नहीं है, समय कांटे से कटता नहीं है, परेशानी होती है, आसन बदलना पड़ता है, आंख खोलनी पड़ती है, देखना पड़ता है, बार बार घड़ी देखते हैं, तो अभी हमारा रास्ता ठीक आया नहीं है। इसलिए उपासना का सामान्य जो नियम है, प्रातःकाल सायंकाल है, दोनों समय है, और स्थान की दृष्टि से उपासना और कैसे करनी चाहिए, इसमें बात लंबी हो जाएगी। एक बार मैंने सोचा उपासना कैसे हो सकती है, तो मुझे लगा कि मैं क्या संसार में किसी की उपासना नहीं करता क्या? उपासना मैं मां की करता हूं, पिता की करता हूं, किसी आदर के गुरु की करता हूं, साधु की करता हूं, कैसे करता हूं उसकी उपासना? कैसे करता उसकी उपासना करता हूं तो मैं उससे मिलना ही तो चाहता हूं, तो मैं भाग के उसके पास जाता हूं। वो जा रहा है तो उसे क्या करता हूं? आवाज देता हूं, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, कब तक देता हूं? जब तक वो सुन नहीं ले। तो मैंने कहा ये तो उपासना और क्या हो गई भाई, मैं किसी के पास जाना चाहता हूं और जाने वाले को मैं क्या कर रहा हूं? पुकार रहा हूं, और पुकारने में और क्या कर सकता हूं? उसका नाम को नाम ही तो पुकारूंगा, और नाम को फिर कितनी बार पुकारूंगा? ये कहते यार ओम 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 की क्या उपासना हुई, क्यों नहीं हुई भाई? अरे राम, अरे राम सिंह, अरे राम सिंह, अरे राम सिंह, कब तक राम सिंह बोलूंगा? जब तक राम सिंह मेरी सुन नहीं लेगा तो मैं ओम 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 कब तक बोलूंगा? जब तक ओम मेरी सुन नहीं लेगा। ये उपासना ही तो क्या है, हम समझते हैं ये बार बार बोलना क्या मतलब है। तो दुनिया में बार बार क्यों बोलता है? बच्चा चिल्लाता है मां 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 मां, कब तक चिल्लाता है? जब तक मां मिल नहीं जाए। तो भगवान भगवान कब तक चिल्लाएगा? जब तक मिल नहीं जाए, इनके झगड़ा है। तो यहां अटपटा नहीं लगता, वहां अटपटा क्यों लगता है? क्यों? कि यहां दूसरा सोच नहीं होता सिवाय मां के, वहां कई सोच घूमते रहते हैं, सुनता नहीं है, क्या करना है जाकर के, इसलिए बेकार लगता है। लेकिन आदमी प्यार में हो, गुस्से में हो, मोह में हो, तो दूसरी बात उसे सूझती नहीं है, वही कहता रहता है आपको, अरे क्या तुम दिन भर उसी की बात कहते रहते हो, कुछ और नहीं है क्या तुम्हारे पास? क्यों, उसको तो उसके अतिरिक्त कुछ सूझते ही नहीं। तो वैसे ही जिस दिन मुझे भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझेगा, मैं बोलूंगा भगवान के बारे में, सुनूंगा भगवान के बारे में, पढ़ूंगा भगवान के बारे में, सोचूंगा भगवान के बारे में, जिस दिन मैं ऐसा हो जाऊंगा उस दिन मैं उसका हो जाऊंगा, क्या परेशानी, कुछ ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप सब मेरे से सहमत होंगे कि हम वाकई एक, जैसे कविता ने शुरू में कहा कि एक आनंद का स्रोत है जो हमारे साथ है पिछले चार दिनों से, और उसका पूरा आनंद लिया है हमने। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार करतूत ध्वनि से उनका धन्यवाद करें। तो मेरे ख्याल भोजन आ गया है या आने वाला है, पर जो भी है मैं आचार्य से कल तक करता हूं, पर ओके कोई बात नहीं।
नहीं मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, आपका और सवाल कर लो।
हाँ और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।
11 बजे स्नैच लिया ना, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, तो पेट खाली हो गया।
ठीक है, पर इसने में कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आप पास है पूछिए।
मैं आपको
आप जो भोजन की बात कर रहे हैं
जी,
वो छांदोग्य उपनिषद में वो महर्षि उदलक श्वेत केतु को समझाता है कि जो भोजन लेते हैं तीन पार्ट में हो जाते हैं ना
जी, हाँ
सूक्ष्म स्थूल और बीच वाला
वाणी बन जाता है।
हाँ राइट, लेकिन जो सूक्ष्म बोलते हैं वो मन बन जाता है,
मन बन जाता है, तेज बन जाता है।
वो कैसे बनता है सूक्ष्म मन
कैसे बनता है? ऐसा है कि लिखा है कि जो हम स्नेह खाते हैं उससे तेज बनता है, और तेज से वाणी प्रकट होती है। कैसे बनता है तो इसकी दो बातें हो सकती हैं, एक तो चिकित्सा विज्ञान की फिजियोलॉजी से कैसे बनता है, और एक सतोगुण रजोगुण तमोगुण से कैसे बनता है। मतलब हमारे यहां हर जो वस्तु है स्थूल रूप से तो ठीक है, उसका क्या पचन होता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में सतोगुण रजोगुण तमोगुण का कारण होती है, और तेज जो है ना वो सतोगुण का कारण है, तो उसके अंदर से सतोगुण का प्रकट होना जो है इस कारण से वो बनता है। और इससे ज्यादा कोई ज्ञान विज्ञान हो तो न तो वहां लिखा है, न मुझे कहीं दूसरी जगह लिखा हुआ मिला है, आपके पास हो मैं जानने को तैयार हूं।
और प्रश्न?
आचार्य सीधा सा क्वेश्चन है, हमारी जो आयु है उनके बारे में बताइए, आयु दुख आयु सुख आयु।
आयुर्वेद ज्यादा पढ़ रहे हो, चरक का सूत्र है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। आयुर्वेद की परिभाषा है कि आयुर्वेद क्या है, आयु के चार भाग हैं, हितायु अहितायु सुखायु और दुखायु। आयु तो सबके पास है, किसी के लिए वो हितकर है, किसी का उसमें अहित है, अहित हो रहा है, किसी में सुख हो रहा है और किसी में दुख हो रहा है। इन चारों को व्यवस्थित करके जो चाहिए, चाहिए क्या, हितायु चाहिए और सुखायु चाहिए, नहीं क्या चाहिए, जो दुखायु है और अहितायु, मतलब मेरा दूर का भी भला होना चाहिए, मेरा वर्तमान का भी भला होना चाहिए। हित और सुख में अंतर क्या है, मैं आज भोजन किया वो मेरी आज भूख मिटे तो ठीक है, लेकिन कालांतर में भी मुझे स्वस्थ रखे, मुझे सात्विक रखे, ये हितायु है, तो मेरी आयु हितायु होनी चाहिए और मेरी आयु सुखायु होनी चाहिए। इसके लिए किए जाने वाले प्रयत्न का नाम आयुर्वेद है। अब इसके तो बहुत सारे साधन है कैसे कैसे होता है, तो उसके लिए चरक पढ़ लेना।